نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير عشرة مبشرة 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی آج اس میں سے ہمارے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور ترتیب اگر حدیث کی دیکھیں ایک حدیث میں ان کا نمبر آٹھواں ہے دوسری حدیثوں میں دوسرا بھی نمبر آتا ہے سعد بن ابی وقاص نام تھا کنیت ابو اسحاق تھی بہت حیرت ہوگی آپ کو سن کر ان کے دو بیٹوں کا نام اسحاق تھا یہ کیسے ہوا اتنا پیارا لگتا تھا ان کو اسحاق نام جی اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر میں سوچ رہی تھی جب پہلا ہوا ہوگا تو ان کو پتا تھا کہ دوسرا بھی ہوگا تو کیا پتا چلا کہ ایک دو بچوں کا ایک بھی نام ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے پھر ان کی کنیت ابو اسحاق تھی ان کے والد کا نام مالک تھا تاریخ میں آپ کو کبھی سعد بن مالک اور کبھی سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے جڑے گا تعلق آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی زہرہ سے تھی یعنی یہ آپ کے ننہالی رشتہ داروں میں سے تھے حضرت سعد کے والد کی چچا زاد بہن تھی اللہ کے نبی کی ماں تو لہٰذا پھر سعد اللہ کے نبی کے کیا لگے مامو زاد بھائی حضرت سعد کی والدہ کا نام حمنا تھا حمنا بنو امیہ سے تھی حضرت سعد کو قریش کے تین معزز قبیلوں کون سے بنو ہاشم بنو زاہرہ اور بنو امیہ سے قرابت داری تھی اور عربوں میں ایسے شخص کا نسب بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا جو کہ معزز قبیلوں سے ہوں پانچویں پشت پر یعنی پانچویں فور فادر پہ جا کر آپ کا نسب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا ہجرت مدینہ سے 30 سال قبل پیدا ہوئے سوچیے ذرا ہجرت مدینہ سے 30 سال پہلے ہوئے تو اللہ کے نبی سے کتنے چھوٹے ہوں گے 23 سال چھوٹے تھے 23 ایئرس آپ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا پرورش اور تربیت بہت عمدہ ہوئی لکھنا پڑھنا جانتے تھے تیر اندازی اور دوسرے فنون جنگ کے ماہر تھے ان کی ماں نے بچپن سے ان کو فنون حرب سکھایا اور کہتے ہیں کہ 15-16 سال کی عمر میں ہی تیر اندازی کے ماہر ہو چکے تھے تیر بنا بھی لیتے تھے قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھا سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کب قبول کیا تو سعد بن ابی وقاص نے 17 برس کی عمر میں 17 کی عمر میں اسلام قبول کیا کس کی رغبت ہوگی بھلا تکا لگا لے ٹھیک ہو جائے گا ہو گیا ٹھیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رغبت سے دعا کریں ہمارا نام بھی ایسی نیکیوں میں آگے آ جائے انہوں نے ہی کہا ہوگا انہوں نے ہی کیا ہوگا یہ ضرب المثل ہونا ہوتا ہے اللہ ہمیں نیکیوں کی ایسی مثالیں بنا دے ابتدا میں اسلام لانے والوں میں تھے السابقون الاولون میں آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے عشرہ مبشرہ میں سے سب اول درجے کے لوگ تھے یہ اب آپ کے پاس بھی موقع ہے اصل میں یہی مطلوب ہوتا ہے جب کوئی دعوت ابھی عروج نہیں پکڑتی اس وقت جو آتے ہیں نا وہ سچ کی بنیاد پہ آتے ہیں طلب کی بنیاد پہ آتے ہیں بعد میں تو ساتھ بہت سارے سب کے لاکھے بھی لگ جاتے ہیں تو نیکیوں کے مواقع پہ پیچھے نہ رہیں یہ مراد ہے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا سنا بھائی آپ میں سے کسی نے ان کا خواب اور خواب دیکھنے سننے اس کی تعبیر کو جاننا تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کئی لوگ بڑے شوق سے خوابوں کی تعبیر بتاتے اور پوچھتے ہیں اور جب خواب سنا رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے پوری کہانی ہوتی ہے لیکن ان کا خواب بہت زمانی تھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت گہرا اندھیرا ہے اور میں اس میں ڈوبتا ہی جا رہا ہوں تاریک سمندر ہے اور اس کی موجوں میں میں ہچکولے کھا رہا ہوں امیجینیشن سے لے لیجئے سوچ میں کہتے ہیں اچانک مجھے نظر آیا کہ دور ایک چاند چمک رہا ہے میں اس چاند کی طرف لپکا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے کچھ اور لوگ بھی اس چاند کے قریب پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے وہ لوگ نظر آئے زید بن حارثہ کون تھے غلام پھر آزاد کیا بی بی خدیجہ نے علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ मैंने इनसे पूछा, आप यहाँ कब आए? उन्होंने जवाब दिया, हम अभी अभी आए। सुबह हुई तो मुझे मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर, यानी बहुत ओपनली नहीं, दीन, अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। मैं समझ गया कि अल्लाह मेरे साथ भलाई चाहता है और मुझे कुफर के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाता है। कहते मैं उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला। ये नोट कीजिएगा, कुछ को अल्लाह के नबी तलाश करते थे, लेकिन ये उन खुशकिस्मत में से हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते थे। आप इस वक्त मोहल्ला जियाद की एक घाटी में तशरीफ़ फरमा थे। मैं वहाँ गया और इस्लाम लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आपने बड़ी शफकत बरती और मैं मुसलमान हो गया। इस वक्त वो तीनों हजरात मेरे सामने आए जिनको मैं ख्वाब में देख चुका था। बड़ा आपको क्लाइमेक्स लग रहा होगा ना, वाह हमें क्यों नहीं ऐसा ख्वाब आता कि हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं ख्वाब आता कि हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन ज़रा आगे तो सुनिए क्या होता है। अब ये ख्वाब की रोशनी में अल्लाह से मदद लेते हुए मुसलमान हो गए। इनकी माँ को पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। गुस्से में आपे से बाहर हुई। कहते मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसने मुझसे नाराज़ होकर कहा, ए साथ, ये कैसा दीन है जिसने तुमसे बाप दादा का दीन छुड़ा दिया? ये ताना मिलता है ख़ानदानी रिवायत के नाम पे, रस्मों के नाम पे, और पता नहीं किस नाम पे। बाखुदा अगर तुमने इस दीन को तर्क ना किया तो मैं मरते दम तक ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी, यहाँ तक के मर जाऊंगी। क्या कहते हैं इसको, धमकियाँ, प्रेशर, भूख हड़ताल? फिर तुम मेरे गम में रोओगे, हमेशा नादिमो शर्मिंदा रहोगे, क्योंकि लोग तुम्हें ताना देते रहेंगे, क्या कि तुमने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। कहते मैंने अपनी माँ की बात सुनी तो मैंने कहा, अम्मी जान, ऐसा हरगिज ना करें, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये दीन आपसे बढ़कर प्यारा है, मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। यही पढ़ा है ना हमने माँ बाप के हकूक में। असल में ये इम्तिहान होता है जिसको हम मजबूरी समझकर कबूल कर चुके होते हैं, क्या करें, फिर मामू के बेटे के चचा के फलां की, कितना करीब का तो रिश्ता, अब उनको कैसे नाराज़ करें। अल्लाह अकबर। खैर, कहते मेरी माँ अपनी धमकी पर कायम रही, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कमज़ोर और लागर हो गई। कहते हैं कि मैं वक्फे वक्फे से जाता, उनसे इल्तजा करता कुछ खा लें पी लें, लेकिन इतनी सख्ती बरतती और कहती मैं मरते दम तक कुछ नहीं खाऊं पीऊँगी, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी अजीज़ है तो ये दीन छोड़ दो। आखिर मैंने एक दिन दो टोक फैसला कर लिया। आप सोचें ये वक्त आपकी भी ज़िंदगी में आते हैं। ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करने पर नहीं आते, इस्लाम के अहकामात कबूल करने पे आएंगे। लोग आपको पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, जब आप गंदगी से निकलना चाहेंगे, आप अपने ऊपर से कर्ज़ों के बोझ उतारने के लिए घर बेचना चाहते हैं, लोग कहेंगे पागल हो गई हो, अपना घर छोड़ के किराए पे जाओगी। तो ये तो होगा, ये तो होता रहा। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम मयातिकुम मसलुल लजीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, ये तो होगा। खैर, कहते हैं मैंने उस दिन दो टोक अपनी माँ को कहा, बेशक मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, अगर आपके जिस्म में हज़ार जाने भी हों और एक एक करके बदन से निकल जाएं, मैं फिर भी दीन नहीं छोड़ूंगा। सोचिए ज़रा, इसको कहते हैं जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। माँ ने क्या किया होगा, जहर खा लिया होगा इसके बाद? नहीं, ठीक हो गई माँ जब देखा कि बेटे का अज़्म पुख्ता है और यकीन है कि मैं इस सूरत में भी दीन नहीं छोड़ूंगा कि माँ मर जाए, तो उसने फिर खा पी लिया। और इन्हीं पे फ़ायदे हैं सूरह लुकमान आयत 15 की, कहते हैं मेरे बारे में ये आयतें उतरी कि भाई जा हदा कालान तुश्री कभी माँ लई सला कभी इल्मन, कि अगर दोनों यानी माँ बाप या कोई एक तुम्हें इस पे मजबूर करें कि मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा, फला तो ते हुमा, तो उनका कहना ना मान, बस साहेब हुमा फि दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी मामलात में उनके साथ अच्छे रहो। इतना प्रेशर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये सवाल है। और साथ भी नबी वक़ास जब मुसलमान हुए, इस्लाम को बहुत कुव्वत मिली। देखिए ये कमज़ोर ईंटें थी, जो मिली तो फिरी तो दीवार बनी। आज इस्लाम की कमज़ोरियों में आप पकड़ लीजिए इस्लाम को। किसी दावत के आगाज़ में जो लोग हैं इसलिए कीमती होते हैं कि थोड़े होते हैं लेकिन खड़े होते हैं, फोकस्ड होते हैं। आप जिस तरह इस कॉज को लेकर आगे चलेंगे दूसरे नहीं चलेंगे, ये मैं आपको भी से बता सकती हूँ। और अगर आपको इस रास्ते में ज़रा सी ठोकरें खानी पड़ गई तो और पक्के हो जाएंगे, बिलीव मी। मैं जो बात कहती हूँ मैं ऊपर से नहीं कह रही, पूरे यकीन और तजुर्बे की बुनियाद पे कह रही हूँ, जिनको एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है ना, वही मजबूत दीवार बनते हैं, बाकी तो हवा है, इधर की उधर, उधर की इधर। खैर, मुसलमान स्ट्रांग हो गए हजरत साद जैसे मजबूत और उलुल अज़्म साथी को आता देकर। फिर माँ का मामला निपटा तो रिश्तेदार शुरू हो गए। मुशरिकीन ने आप पे जुल्म सितम किया। ये वो दौर था कि कुफार के शर से बचने के लिए मक्का की घाटियों में छुप कर नमाज पढ़ते थे लोग। एक दिन सहाबा इकराम किसी वीरान घाटी में नमाज अदा कर रहे थे तो वहां से कुछ मुशरिकीन गुजरे। जब उन्होंने सहाबा को नमाज पढ़ते देखा तो एकदम शोर मचा दिया कि लोगों को जमा किया कि इधर आओ देखो ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने जमा होकर उनको मारना शुरू कर दिया। इस पे कहते हैं हजरत साद की गैरत ईमानी जोश में आई, करीब पड़ी एक मुर्दा ऊंट की हड्डी, यानी ऊंट के शाने जो होते हैं ना बहुत चौड़े होते हैं, वो पकड़कर एक मुशरिक के सर पर मारी, उसका सर फटा और खून बहने लगा। ये मंजर देखकर मुशरिकीन भाग गए। तो नोट कीजिएगा, हजरत साद बिन अबी वकास की एक और खूबी, पहले सहाबी जिन्होंने इस्लाम की राह में सबसे पहले खून बहाया किसी दुश्मन का। अभी तक सहाबा को जरूरत नहीं थी हाथ उठाने की और लड़ने की। फिर इसी तरह मक्की दौर में जब अल्लाह के नबी और साथी बनु हाशिम का मुआशरती बायकॉट हुआ, हजरत साद ने भी वॉलंटेरियली अपने आप को खुशी से शाबे अबी तालिब में मखसूर किया। ये होता है सपोर्ट करना। देखिए, शुरू में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाद में तो फिर बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए रहे कि लोगों को पता चले कि मैं इस कॉज के साथ हूँ, मैं नबी के साथ हूँ और सख्त मुसीबतों में रहे। सुनिए ज़रा इनका वाक्या। कहते हैं, एक दफ़ा रात को मुझे एक सूखे चमड़े का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे पानी से धोकर साफ़ किया, फिर आग पर भून लिया, फिर कूट कर पानी में घोल कर सत्तू की तरह पी लिया ताकि मेरी भूख मिट जाए। यह है साबिकून अलवलून। ऐसे दर्जे नहीं मिलते। जब तक आप किसी कॉज में जान माल वक्त सेहत नहीं लगाएंगे और संजीदगी से नहीं लगाएंगे, आपका कोई मुकाम नहीं। हम बस वो कहते हैं हमारा सबकी नज़रों में मुकाम बने, सबकी नज़रों में नहीं बनेगा, एक में बना लीजिए, यही तौहीद है। सब हमसे खुश नहीं होंगे। बहरहाल हिजरत का वक्त आता है। अपने छोटे भाई उमैर के साथ मक्के से मदीना हिजरत की, और जब मदीना में आए तो मवाखात हुई। इनकी मवाखात किससे हुई थी, सुना वह कभी कुछ? चले एक हिंट दे देती हूँ, अल्लाह के नबी के हम शक्ल मुसब बिन उमैर के साथ इनका भाईचारा हुआ। और मदीना हिजरत करने के बाद नबी सल्लम ने, यानी मक्का में भी अल्लाह के नबी ने मुसब बिन उमैर, असल में महाजिर थे ना, मक्का में मुसब बिन उमैर थे और मदीना में आने के बाद साद बिन माज अल अंसारी जो कबीला औस के सरदार थे, अल्लाह के नबी ने इनको उनके भाई बनाया। मुखालिफ हवाओं को अपने खिलाफ चलता देख कर भी इनके कदम नहीं झुकते थे, और ये इस्लाम कबूल करने के लिए इतने हरीस थे, तो इनके लिए इस्लाम पे अमल करना क्या बड़ी बात होगी? हु केयर्स, खुश हो जाओ, नहीं तो ना से बाढ़ में जाओ, ये स्टाइल था। हम छोटी छोटी बातों पे लोगों का मुंह देखते हैं, कोई इतराज ना करते, किसी का दिल ना टूट जाए। अल्लाह ताला हमें आपको जुरत दे दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।